निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले हम देखें कि ये निदानात्मक शिक्षण है क्या। निदानात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो उपलब्धि परीक्षण का ही एक रूप है, जिनके अंतर्गत विशिष्ट विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभव के अर्जित ज्ञान की विशिष्टताओं एवं कमियों का मूल्यांकन किया जाता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के स्तर का पता नहीं लगाया जाता, बल्कि विद्यार्थी किसी विषय को समझने में क्या कठिनाई अनुभव कर रहा है, इस कठिनाई का क्या कारण हो सकता है, कठिनाई को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया जा सकता है। और जो विशिष्ट विषयगत कठिनाइयाँ एवं कमजोरियाँ हैं उनको दूर करने के लिए अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे बालक अपनी योग्यता अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया को उपचारात्मक अध्ययन रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। जिस तरह से एक सफल चिकित्सक किसी रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व उसके रोग का निरीक्षण करता है, कारण जानने के लिए यंत्रों का सहारा लेता है, रोग का इतिहास जानता है और रोग के इतिहास को तैयार करके लक्षणों की तुलना करके विभिन्न रोगों से चिकित्सा प्रारंभ करता है, उसी प्रकार से एक सफल शिक्षक भी सबसे पहले यह ज्ञात करता है कि बालक किन कारणों से विषय को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, उसके कठिनाई की ये स्थल कौन कौन से हैं और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो उस छात्र की श्रेणी में आते हैं। इन कठिनाइयों और अयोग्यताओं के स्वभाव को समझने के बाद उन कारणों को जानने के लिए वह उन बालकों का अध्ययन करता है जो कि ऐसी कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। इन कठिनाइयों के कारण शारीरिक दोषों में, घरेलू वातावरण में, दूषित वातावरण में, रुचि की न्यूनता में, पूरी आदतों में, संवेगों में, दोषपूर्ण अध्यापन में, वह उन चीजों को खोजता है जो कि उसका कारण रहे हों। निश्चित ही अध्यापक का यह कार्य चिकित्सक के कार्य से अत्यंत जटिल है, क्योंकि किसी रोग का कारण वायरस जीवाणु हो सकता है, लेकिन शिक्षा संबंधी कारण इतने जटिल होते हैं कि उनका विश्लेषण करना कठिन हो जाता है, जिसके लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की विधियों, परीक्षणों एवं उपकरणों का सहारा लेता है। बालक की कमजोरी का इस प्रकार निदान कर चुकने के पश्चात वह फिर विविध उपचारिक विधियों की सहायता से उपचार करता है और बालक की कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है, जिसको ही शैक्षणिक निदान या निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। निदान का अर्थ रोग के कारण का पता लगाना। हम देखते हैं कि गुड महोदय ने क्या कहा है इस बारे में। उनका कथन है कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। मतलब हम जो अधिगम संबंधी परेशानियां होती हैं उनको निदान के अंतर्गत रखते हैं और उपयुक्त कारण और निवारण से बच्चा सही रास्ते पे जा सकता है। आइए देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले है कि अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार लाने हेतु परामर्श प्रदान करना। नंबर दो पे आते हैं कि विशिष्ट विषय वस्तुगत अधिगम इकाई में प्राप्त गुणों के आधार पर विद्यार्थी एवं अभिभावक को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। नंबर तीन पे आते हैं छात्र की विषय संबंधी कमियों, जो वीकनेस होती हैं, हीनताओं तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना। अगला, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना। अगला, विशिष्ट विषय संबंधी विशिष्टताओं एवं कमियों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों अथवा पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा उन्हें छात्रों की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाना। आगे चलते हैं सफलता के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के चयन में सहायता करना। अगला देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता करना। अगला, समस्याओं के निदान संबंधी कारणों की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षणों, प्रविधियों एवं उपकरणों के चयन में सहायता प्रदान करना। अगला देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। अब देखते हैं कि ये जो निदानात्मक परीक्षाएं हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहले मैंने आपको उद्देश्य बताया, अब उद्देश्य के बाद बढ़ते हैं हम विशेषताओं की ओर। कि जो परीक्षाएं हैं वो पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं। दूसरी बात, ये परीक्षाएं प्रमापीकृत होती हैं, परंतु कुछ विद्वानों का विचार है कि निदानात्मक परीक्षाओं को प्रमापीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, ये परीक्षाएं विशिष्ट उद्देश्यों स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये परीक्षाएं बालक की योग्यता का मापन नहीं करती, बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं। अगला देखिए, ये परीक्षाएं समय सीमा के निर्धारण में नहीं होती, अर्थात इन परीक्षाओं में समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती। नेक्स्ट चलते हैं, ये परीक्षाएं विशेष विश्लेषणात्मक होती हैं तथा किसी भी प्रक्रिया के अंशों का पूर्ण विश्लेषण करती हैं। अगला देखिए, इन परीक्षाओं का आधार ऐसे तथ्य या मानक होते हैं जिन्हें प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, इन परीक्षाओं में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसमें तो केवल यह देखा जाता है कि विद्यार्थी किस स्तर की कठिनाई वाले प्रश्नों को हल कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, ये परीक्षाएं सीखने वाले अधिगमकर्ता की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं। अगला, ये परीक्षाएं बालकों की प्रगति का सुनिश्चित रूप से परीक्षण करती हैं। तो ये तो हो गई आपकी निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं। आगे हम देखते हैं कि ये जो निदान प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य को करना चाहिए। सबसे पहले हमें निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन करना चाहिए, जो कि विद्यालय में समायोजन कर पाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे छात्र खोजे जाएं, और ये वो छात्र हैं जो किसी एक अथवा अधिक विषयों में कमजोर होते हैं और स्कूल की कुछ अन्य क्रियाओं में ठीक से समायोजन नहीं कर पाते। ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी एवं प्रायोगिक कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे बालकों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के सम्मुख आना चाहिए। दूसरा, जिन छात्रों की उपलब्धि असंतोषजनक हो उन्हें साफल्य परीक्षा अर्थात अचीवमेंट टेस्ट और बुद्धि परीक्षाएं इंटेलिजेंस टेस्ट दे करके छांट लिया जाए। अगला, जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अपने अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे छात्रों के चयन में साक्षात्कार प्रविधि काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है। अगला, ऐसे छात्र भी होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि काफी ऊंची होने पर भी निष्पादन बहुत ही निम्न स्तर का होता है, तथा ऐसे छात्र भी मिलते हैं जो कक्षा में तो फर्स्ट आते हैं लेकिन समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। अतः ऐसे ला अचीवर्स तथा मिसफिट्स का बड़ा सावधानी से चयन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं, अगला जो प्रक्रिया है निदान की, कि छात्रों की कठिनाई स्थलों की खोज करना। इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय को सीखने में बालक किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव कर रहा है, निदानात्मक तथा निष्पादन परीक्षाओं से सहायता ली जा सकती है। लेकिन इस कार्य के लिए सबसे उत्तम यंत्र वही निदानात्मक परीक्षाएं हैं जो बालक की कमजोरियों एवं क्षमताओं को हमारे सामने सही तरीके से चित्रित करती हैं। इसके बाद जो निदानात्मक परीक्षा है, इसका क्षेत्र हम देखते हैं कि बड़ा संकुचित और सीमित है। फिर भी जिस ढंग से संकुचित क्षेत्र का परीक्षण ये परीक्षाएं करती हैं वो विलक्षण होता है, अगर वास्तविक रूप से किया जाए तो। परीक्षा का नैदानिक महत्व उसको प्रयोग करने वाले अध्यापक पर अधिक निर्भर करता है, परीक्षा के स्वरूप पर कम। अगला देखिए, कठिनाई वाले जो स्थल हैं उन स्थलों का विश्लेषण करना। कोई बालक कोई बालक एक विशेष प्रकार की गलती लगातार कर रहा है तो ये जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मस्तिष्क विलक्षण ढंग से कार्य करता है। बालक की विषयगत कमजोरियां और कठिनाइयों की प्रकृति या कठिनाई स्थलों का पता लग जाने पर उस कमजोरी तथा कठिनाई के कारणों का पता लगाया जाता है। अध्यापक इन प्रकार कारणों को शारीरिक दोषों, संवेगों की अस्थिरता, अरुचि, बुरी आदतों, सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि का अभाव, विद्यालयी कारणों जैसे आपके हो गए विद्यालय कारण में कि अध्यापक एवं सहपाठियों का दुर्व्यवहार किसी भी कारणवश, या परीक्षा में बार बार विफल होना, या अध्यापक द्वारा छात्र में व्यक्तिगत रुचि ना लेना, या पक्षपातपूर्ण रवैया, कठोर अनुशासन, ये सारी बातें, या देखिए घरेलू कारण भी इसमें आते हैं, जैसे माँ बाप एवं संबंधियों का दुर्व्यवहार होना, पढ़ाई के लिए उचित साधन एवं वातावरण का ना होना, तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त निर्धनता, घरेलू कार्यों में व्यस्तता, ये सारी चीज़ों को भी उसमें लिया जा सकता है। कभी कभी इन कारणों का अंदाजा लगाना अपने अनुमान या अनुभव के आधार पर मुश्किल भी हो जाता है। अगला देखते हैं कि उपचारात्मक प्रक्रियाएं। ये जो उपचारात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये बालक की कमजोरियों का निदान कर चुकने पर उन कमजोरियों को दूर करने के या उपाय करने की ओर अग्रसर करती हैं। बालक की कमजोरियां एवं गलतियां जो हैं, त्रुटियां, उनको कम करने के लिए एक उपयुक्त योजना बनाई जाती है, जिसमें उसकी कमजोरियों एवं कारणों का ब्यौरा रहता है और उन कारणों को दूर करने के उपायों का भी विवरण होना चाहिए। यदि कई बालकों में एक सी गलती की है तो समूह में उनका उपचार किया जा सकता है, और यदि व्यक्तिगत गलती है तो व्यक्तिगत रूप से उपचार करना चाहिए। जब हम उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं तो इन बातों का अध्यापक होने के नाते हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अधिक प्रतिभाशाली छात्र के साथ ये परीक्षाएं इतनी सफल नहीं हो पाती हैं जितनी कि मंदबुद्धि बालकों के साथ होती हैं। दूसरी बात, बुद्धिहीन छात्रों की त्रुटियों को दूर करने में हमें इन विधियों के प्रयोग में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। तीसरी बात कि बुद्धिहीन बालकों की जो बुरी आदतें हैं उनको छुड़ाने में समय लग सकता है, इसलिए अध्यापक को धैर्य से काम लेना चाहिए। चौथी बात, यदि उपचारात्मक कार्य में सफलता प्राप्त ना हो तो कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। पांचवी बात, प्रत्येक छात्र की प्रगति का भिन्न ग्राफ एवं चार्ट होना चाहिए। छठी बात, जो बालक प्रगति कर रहे हों उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। आठवीं बात कार्य में सजीवता लाने की दृष्टि से आकर्षक सहायक सामग्री एवं प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और अगली बात, छात्र जिस विषय में कमजोर हो उससे संबंधित साहित्य, पत्र पत्रिकाएं आदि उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए। अगले बिंदु पे हम चलते हैं कि त्रुटियों की रोकथाम के उपाय। जैसे देखिए कि छात्र विषय को सीखने में भविष्य में गलती ना करें तो उसके स्कूली तथा घरेलू वातावरण में परिवर्तन कर देना चाहिए, जिससे उसको समायोजन की जो समस्या है उसका स्थायी हल निकल सके। इसके लिए हमें अतिरिक्त बहुमुखी योजना तैयार करनी चाहिए, जैसे विद्यालय की परिस्थितियों में सुधार, पाठ्यक्रम संशोधन, परीक्षा पद्धति में सुधार, अभियोग्यता परीक्षाओं का उचित निर्माण, व्यवहार परिवेश में सुधार, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि जो निदानात्मक परीक्षण है इसके निर्माण में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत जब हम किसी कार्य को करते हैं तो बालक की जो परेशानियां हैं उनको जानने के बाद, कारण को जानने के बाद, उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां रखें। जैसे सबसे पहली बात है कि जहां तक हो सके निदानात्मक परीक्षाओं का निर्माण अध्यापक को स्वयं ही करना चाहिए, किसी दूसरे को उसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अध्यापक को छात्र से निकटता का संपर्क करके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तीसरी बात कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कठिन स्थलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथी बात कि विषय वस्तु की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए ही निदानात्मक परीक्षा का निर्माण किया जाए। पांचवी बात कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। छठी बात, छात्रों के उत्तरों की जांच बारीकी से की जाए एवं त्रुटियों की विस्तार से टिप्पणी की जाए। सातवीं बात, इस बात के लिए प्रयास किए जाएं कि छात्र सुधारी गई त्रुटियों को भविष्य में न दोहराएं। अगली बात, अध्यापक को प्रत्येक उप विषय की कठिन सामग्री पर निदानात्मक परीक्षाएं तैयार करनी चाहिए। और अगली बात, उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात यदि उचित लगे तो उसी निदानात्मक परीक्षा का फिर से उपयोग किया जाए। और अंतिम बात, नवीन उप विषय पढ़ाने से पूर्व भी निदानात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताऊंगी।